हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यहाँ हजारों कहानियां हैं आपके लिए। लंच ब्रेक बीत गया था, पर अर्णव ने लंच नहीं किया था। इस वक्त वो अपने कैबिन में मौजूद था। ध्रुति तो चली गई थी, पर उसकी कई बातें अब तक अर्णव के कानों में गूंज रही थीं। हर कोशिश करके अब हार गया था। उम्मीद की जिस नाजुक सी नाजुक डौर को थामे वो अब तक सब्र किए फल के इंतजार में बैठा था, अब वो भी टूटती नजर आ रही थी। ध्रुति का बार बार ये कहना कि वो उसे कभी माफ नहीं करेगी, कभी उसके पास लौटकर नहीं आएगी, वो उससे प्यार नहीं करती, ये बातें अर्णव को अंदर ही अंदर तोड़ती जा रही थीं। कमजोर नहीं था वो, पर जिसे दिलो जान से चाहा हो उसकी नफरत और नाराजगी चट्टान जैसे मजबूत से मजबूत इंसान को भी तोड़कर बिखेर देती है, और यही इस वक्त अर्णव के साथ हो रहा था। शायद वो गाना जब उसने रेस्टोरेंट में गाया था वो सिर्फ एक गाना नहीं था, उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी हकीकत थी, उसके एहसास, उसके जज्बात थे, और ध्रुति की नाराजगी मार रही थी उसे, जिससे ध्रुति पूरी तरह से अनजान थी। बहुत सोचने पर भी अब अर्णव को आगे कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था, और किसी हारे हुए खिलाड़ी जैसे वो सर झुकाए खोया हुआ सा बैठा था, जब अचानक ही धाड़ की आवाज के साथ उसके कैबिन का दरवाजा खुला, और साथ ही ध्रुति की गुस्से भरी तीखी आवाज से वो कैबिन कांप उठा। मिस्टर अर्णव सिंह रायजादा, अचानक आई ध्रुति की आवाज सुनकर अर्णव चौंकते हुए उठ खड़ा हुआ और आंखों की पुतलियां फैलाए हैरान परेशान सा उसे देखने लगा। उसे समझ नहीं आया कि ध्रुति तो चली गई थी, फिर आई कब और इतने गुस्से में क्यों लग रही थी। बेचारा अभी कुछ समझ भी नहीं सका था कि ध्रुति एक बार फिर गुस्से से चीख पड़ी, समझते क्या है आप खुद को और मैं क्या लगती हूँ आपको? क्यों आप मुझे सुकून से जीने नहीं देते? आखिर बिगाड़ा क्या है मैंने आपका जिसका बदला आप मुझसे इस तरह ले रहे हैं? ध्रुति की बातें अर्णव के सर के ऊपर से होकर गुजर गईं। उसके इस तरह के व्यवहार और बातों के पीछे की वजह समझने में वो पूरी तरह से असमर्थ रहा। ध्रुति जैसे ही चुप हुई अर्णव ने चिंतित स्वर में सवाल किया, ध्रुति हुआ क्या है, तुम इतने गुस्से में क्यों हो? ज्यादा अनजान मत बनिए, क्योंकि अब मैं सब जान गई हूँ, अब आपका ये नाटक और नहीं चलेगा। सब जान गई हूँ मैं कि ये सब जो हो रहा है उसकी वजह आप हैं। आप ये सब जानबूझकर कर रहे हैं ना, ताकि मुझे अपने पास वापस आने के लिए मजबूर कर सकें। ध्रुति गरजते हुए उस पर बरस पड़ी, पर अर्णव अब भी कुछ समझ न सका और उलझन भरी नजरों से उसे देखने लगा। क्या कर रहा हूँ मैं जानबूझकर, जो तुम्हें पता चल गया और गुस्से से ज्वालामुखी बने फट रही हो तुम? कुछ बताओ भी तो सही, आपको नहीं पता? ध्रुति ने आंखें तरेड़कर उसे घूरा। जवाब में अर्णव ने झट से इनकार में सर हिला दिया। ओहू, नहीं जानता, तुम बताओ। ध्रुति उसे यूं अनजान बनते देखकर खींच उठी और गुस्से में जबड़े भींचते हुए उसे घूरने लगी। सब जानकर भी अनजान बन रहे हैं आप, सब मुझसे सुनना चाहते हैं, तो चलिए मैं ही बता देती हूँ कि आप मेरे खिलाफ कैसी चालबाजियों का इस्तेमाल कर रहे हैं ताकि मैं आपके पास लौट आऊँ, और इसके लिए आपने जायज नाजायज हर रास्ता इख्तियार किया। अर्णव के चेहरे के भाव अब कुछ बदल गए, भौहें तन गई। तुम कहना क्या चाहती हो, साफ साफ कहो। मैं आज आपका असली चेहरा देखकर आ रही हूँ कि कितने बड़े झूठे, धोखेबाज, चालबाज, फरेबी और मक्कार आदमी हैं आप। अपने मकसद को पूरा करने के लिए किस हद तक गिर सकते हैं? मुझे तो लगा था कि आप बदल गए हैं, पर नहीं, आप बिल्कुल नहीं बदले। आप आज भी वही अर्णव सिंह रायजादा हैं जिसे अपने आगे कोई नजर नहीं आता, जो अपने गुरूर और घमंड को बनाए रखने के लिए कुछ भी कर सकता है, जिसकी नजरों में बाकी लोगों और उनकी इच्छाओं की कोई अहमियत नहीं। ध्रुति का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उसके लगाए इल्जाम सुनकर अर्णव के चेहरे पर गंभीर भाव उभर आए। किया क्या है मैंने ध्रुति, इल्जाम लगा रही हो तो पहले मेरा गुनाह तो बताओ। ध्रुति ये सुनकर एक बार फिर उस पर भड़क उठी। किया क्या है आपने, ये आप मुझसे पूछ रहे हैं? खुद से पूछिए कि क्या किया है आपने। कितने बड़े बड़े वादे किए थे आपने, प्यार मोहब्बत की कितनी बड़ी बड़ी बातें करते थे, पर अंत में किया क्या आपने? बस आपके वो सारे दावे धरे के धरे रह गए। क्या कहा था आपने मुझसे कि इस बार धोखा नहीं करेंगे मेरे साथ, मेरे विश्वास को नहीं तोड़ेंगे, मुझे ढूंढने की कोशिश नहीं करेंगे और इंतजार करेंगे जब किस्मत हमें दोबारा मिलाएगी। पर आपसे इंतजार किया ही नहीं गया, अपने गुनाहों की सजा को अधूरा छोड़कर भाग निकले आप, माधुरी का सहारा लेकर यहाँ चले आए, मुझे धोखे में रखा और अपने दोस्त मेरी दोस्त के साथ मिलकर प्लानिंग करते रहे मुझे अपने जाल में फंसाने की और अब कितने इनोसेंट बन रहे हैं, पर मैं अब आपके डिसजाल में नहीं फंसने वाली। सब पता चल गया है मुझे कि आपका यहाँ आना, उस पार्टी में मुझसे मिलना, मेरे घर पहुँच जाना, उस रेस्टोरेंट में आना, मेरे ऑफिस को खरीदना ताकि मुझे अपने पास रहने पर मजबूर कर सकें, वो बातें कहना ताकि मुझ पर दबाव बना पाएं, उस लड़की का आना ताकि मुझे जेलस फील करवा सकें, मरने की धमकी देना ताकि मैं डर कर आपकी बात मान लूं, सब कुछ आपकी सोची समझी साजिश का नतीजा था जिसे आपने कबीर की मदद से माधुरी के साथ मिलकर अंजाम दिया। पर अफसोस कि इतनी अच्छी और जबरदस्त प्लानिंग के बावजूद आप अपने मकसद में कामयाब नहीं हो सके, क्योंकि वक्त रहते आपकी सारी सच्चाई मेरे सामने आ गई। धृति के मन में जो भी आया, जो बात उसके दिमाग में थी, वो सब लगातार बोलती चली गई। अर्णव शांत बैठा खामोशी से उसके लगाए इल्जाम सुनता रहा। धृति अपनी बात कहकर चुप हुई तो अर्णव ने शांत लहजे में उससे सवाल किया, किसने कहा तुम्हें ये कि मैंने माधुरी से मदद ली है और मेरा तुम तक पहुंचना कोई इत्तेफाक नहीं, मेरी सोची समझी साजिश है? किसी ने भी कहा हो, पर आपका असली चेहरा मेरे सामने आ गया है। पहले तो मुझे बहुत बुरा लगता था आपके लिए, पिघलने लगी थी मैं, सोचने लगी थी कि आप बदल गए हैं, पर नहीं, आपके बारे में मैं पहले ही सही थी, आप कभी नहीं बदल सकते, आप पहले भी खुदगर्ज थे और आज भी खुदगर्ज हैं। अपनी जिद पूरी करने के लिए पहले भी आप सामने वाले की इच्छाओं, उसकी चाहतों को बड़ी ही बेरहमी से अपने गुरूर तले रौंद देते थे और आज भी वही किया आपने। तब भी आपकी नज़रों में मेरी भावनाओं की कोई अहमियत नहीं थी और आज भी आप बस अपनी चाहत पूरी करना चाहते हैं, पर मुझे नहीं पता था कि आप अपनी जिद पूरी करने के लिए ऐसा रास्ता अपनाएंगे, धोखा देंगे मुझे। धृति के अल्फाजों में गुस्से के बजाय दर्द घुलने लगा था और पलकें भीग गई थीं, पर अर्णव के चेहरे के भाव नहीं बदले। अब भी उसके चेहरे पर गंभीर भाव मौजूद थे और भावहीन निगाहें धृति पर ठहरी हुई थीं। धृति का उस पर यूं झूठे इल्ज़ाम लगाना, उसकी मोहब्बत को जिद का नाम देना अर्णव से बर्दाश्त नहीं हुआ और धृति के चुप होते ही उसने रोषपूर्ण लहजे में कहा, जिसे तुमने मेरी जिद कहा वो तुम्हारे लिए मेरी मोहब्बत है, पर अफसोस कि तुम उसे कभी समझ ही नहीं सकी। मुझ पर खुदगर्ज होने का इल्ज़ाम लगाया है ना तुमने, तो अगर इतना ही खुदगर्ज होता, वाकई मेरी नज़रों में तुम्हारी मर्जी, इच्छा, भावनाओं की कोई अहमियत नहीं होती, तो तुम्हारे कहने पर, ये जानते हुए कि तुम्हारे बिना एक एक पल बिताना दुश्वार हो जाएगा मेरे लिए, तुम्हें खुद से दूर जाने की इजाज़त कभी नहीं देता। मुझे नहीं पता कि तुम कहाँ से क्या और कितना पता करके आई हो और ये बातें किसने तुम्हारे दिमाग में भरी हैं, पर मैं इतना जानता हूँ कि मैंने कोई धोखेबाजी नहीं की है तुम्हारे साथ। ईमानदारी से तुम्हारी दी सजा भुगती है और तुमसे यहाँ दोबारा मिलना महज एक इत्तेफाक था। अगर मैं सच में चीटिंग से तुम्हारे पास पहुँचना चाहता तो मेरे पास बहुत से रास्ते थे, तुमने तो अपना नंबर तक नहीं बदला था। अगर चाहता तो अगले ही दिन तुम्हारी लोकेशन ट्रेस करवा कर तुम्हारे पास चला आता, पर मैंने ऐसा नहीं किया। मैंने तुम्हारी दी सजा को कबूल किया, 3 साल तुम्हारे बिना अकेला तड़पता रहा और यहाँ भी सिर्फ इसलिए आया था क्योंकि यहाँ से हमारी कुछ अच्छी यादें जुड़ी हैं।
मुझे बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था कि यहाँ आकर मेरा इंतज़ार, मेरी सज़ा खत्म हो जाएगी और मुझे तुम वापस मिल जाओगी। अगर ऐसा होता तो मैं बहुत पहले यहाँ आ चुका होता। मुझे आपकी बात पर भरोसा नहीं, हो सकता है कि सब इत्तेफाक दिखाने के लिए आपने ये भी प्लान किया हो ताकि मुझे शक न हो। धृति तो जैसे अर्णव को धोखेबाज मान चुकी थी, उसकी सच्चाई पर भी वो विश्वास करने को तैयार नहीं थी। इस वक्त अर्णव को एहसास हुआ कि धृति को तब कैसा फील होता होगा जब उसकी सच्चाई को अर्णव सिरे से नकार कर उसे गुनहगार ठहरा दिया करता था। एक साया सा आकर उसके चेहरे पर से गुजरा और अपनी बेबसी पर मन ही मन मुस्कुराया। मैंने तुम्हें सच्चाई बताई है, इस पर विश्वास करना न करना पूरी तरह से तुम पर निर्भर करता है। मैं अपनी सच्चाई का कोई सबूत नहीं दे सकता तुम्हें। आज़ाद हो तुम, जो चाहे सोच सकती हो, पर एक बात याद रखना कि एक गलतफहमी का शिकार मैं हुआ था जिसकी बहुत बड़ी कीमत चुकाई है मैंने। कहीं तुम्हें भी मुझ पर विश्वास न करने की कीमत न चुकानी पड़ जाए और जब तक तुम्हें मेरी सच्चाई का भरोसा हो बहुत देर न हो जाए। खो न दो तुम मुझे, वो भी हमेशा हमेशा के लिए। अर्णव बेहद संजीदा था, पर धृति इस वक्त इतनी गुस्से में थी कि उसे सब झूठ और फरेब ही लग रहा था। उसने हिकारत भरी नज़रों से उसे घूरा और गुस्से में वहां से निकल गई। अर्णव की आखिरी उम्मीद भी अब टूटकर बिखर गई और लबों पर दर्द भरी मुस्कुराहट सजाए वो सुनी निगाहों से धृति को खुद से दूर जाते हुए देखता रहा। ये दूरियां शायद अब कभी नहीं मिटेंगी और धृति अब कभी उसके पास लौटकर नहीं आएगी। एक टीस सी उठेगी उसके मन में और पल के मुद्दत बाद आज फिर अपनी मोहब्बत को खोने के गम से सराबोर थीं। रात गहराती जा रही थी। दिन भर की थकान के बाद लोग अपने अपने घरों में आराम फरमा रहे थे। रात के इस सन्नाटे में किसी गाड़ी के चलने की आवाज गूंज रही थी, जो फुल स्पीड में दार्जिलिंग की सुनसान वीरान सड़कों पर दौड़ रही थी। कुछ देर बाद सामने से एक बेकाबू ट्रक तेजी से उस कार की ओर बढ़ने लगी, पर न तो कार की स्पीड कम हुई और न उसकी दिशा बदली। ऐसा लग रहा था जैसे उसके अंदर बैठा शख्स के अंदर मौत का खौफ खत्म हो गया है, और वो तो जैसे सर पर कफन बांधे मौत को गले लगाने के इरादे से ही रात के इस पहर में घर से निकला था। देखते ही देखते वो बेकाबू ट्रक उस कार को टक्कर मारते हुए कुछ आगे निकलकर एक चट्टान से जा टकराई। कार टक्कर खाकर दो तीन बार पलटी, उस नई चमचमाती गाड़ी के परखच्चे उड़ गए थे और गाड़ी के बंद दरवाजे के नीचे से खून की गाड़ी धार बहने लगी थी। एक्सीडेंट इतना भयंकर था कि रात भी थरथरा उठी। टू बी कंटिन्यूड।